एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने करीब 5 सदियों से दुनिया भर के शासकों, नेताओं, विचारकों को आप कह सकती हैं उकसाया भी है और उलझाया भी है।
हाँ बिल्कुल, और विवादों में भी खूब रही है ये किताब। हम बात कर रहे हैं निकोलो मैकियावेली की मशहूर कृति द प्रिंस की। मैं हूं मेजबान दो का नाम।
और मैं हूं मेजबान एक का नाम। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि लगभग 1513 के आसपास लिखी गई, पर आज भी ये उतनी ही मतलब रेलेवेंट लगती है ना?
सही बात है। ये हमें सत्ता की असलियत, लीडरशिप की जो चुनौतियां हैं और अक्सर वो जो सही गलत के बीच का संतुलन होता है ना, उस पर सोचने को मजबूर करती है।
हाँ, क्योंकि सत्ता का खेल वो सिर्फ राजनीति तक ही तो सीमित नहीं है।
बिल्कुल, दफ्तर हो, कारोबार हो या हमारे आपसी रिश्ते भी, ये पावर डायनेमिक्स तो हर जगह हैं। और मैकियावेली हमें इन समीकरणों को समझने का एक कह सकते हैं कड़वा सच दिखाने वाला नजरिया देते हैं।
तो चलिए इसी नजरिए को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं आज।
तो पहले ये जानते हैं कि ये निकोलो मैकियावेली थे कौन। इनका जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था।
हाँ, और ये कोई मतलब सिर्फ किताबी बातें करने वाले दार्शनिक नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक मंझे हुए राजनयिक थे, राजनेता थे। उन्होंने फ्लोरेंस गणराज्य में करीब 14 साल एक ऊंचे पद पर काम किया।
अच्छा।
और इस दौरान उन्होंने फ्रांस, पवित्र रोमन साम्राज्य, इटली के अलग अलग राज्यों में कई अहम डिप्लोमेटिक मिशंस पर काम किया। उन्होंने उस वक्त के जो बड़े ताकतवर और कह लीजिए चालाक नेता थे, जैसे सीजर बोर्जिया या पोप जूलियस द्वितीय, उनको बहुत करीब से देखा। तो उनका तजुर्बा जमीनी था, किताबी नहीं।
मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। उन्होंने सत्ता को बनते बिगड़ते, नेताओं को उठते गिरते अपनी आंखों से देखा था। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी।
सही। फिर 1512 में हालात बदले। मेडिसी परिवार फ्लोरेंस में सत्ता में वापस आ गया और मैकियावेली के लिए मुश्किल समय शुरू हुआ। उन पर साजिश का आरोप लगा, जेल हुई, यहां तक कि यातनाएं भी झेलनी पड़ी।
ओहो।
हाँ, रिहाई के बाद उन्हें शहर से निकाल दिया गया और इसी निर्वासन के दौर में शायद राजनीति में वापसी की उम्मीद लिए उन्होंने द प्रिंस लिखी। इसे उन्होंने मेडिसी शासक लोरेंजो को समर्पित किया था।
तो ये किताब उनके अपने अनुभव, इतिहास की गहरी समझ और उस उथल पुथल भरे दौर की उपज है। ये सत्ता की कठोर सच्चाइयों का एक तरह से विश्लेषण है, कोई हवाई बातें नहीं।
बिल्कुल। अब आते हैं किताब पर। द प्रिंस आखिर है क्या चीज? ये असल में नए शासकों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है।
नए शासक मतलब?
मतलब वो शासक जिन्हें गद्दी विरासत में नहीं मिली, बल्कि जिन्होंने अपनी काबिलियत, किस्मत या जीत से सत्ता हासिल की है।
अच्छा, और इसका जो मूल विचार है वो उस जमाने के हिसाब से तो बड़ा क्रांतिकारी रहा होगा।
हाँ बिल्कुल। मैकियावेली का कहना था कि शासक का पहला काम है अपने राज्य को सुरक्षित रखना और अपनी ताकत बनाए रखना, और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो पारंपरिक नैतिकता के दायरे से बाहर भी जाना पड़ सकता है।
उस जमाने में तो शायद ऐसी किताबें लिखी जाती थी जो राजाओं को नेक, दयालु बनने की सलाह देती थी।
हाँ, उन्हें राजकुमारों के लिए आईना या मिरर्स फॉर प्रिंसेस कहते थे। ये किताबें शासकों को आदर्श गुण अपनाने को कहती थी। मैकियावेली ने इस चलन को सीधे सीधे नकार दिया। उन्होंने कहा कि असल दुनिया में सिर्फ अच्छे बने रहने की कोशिश करना अक्सर खतरनाक साबित होता है।
तो ये किताब राजनीति को एक अलग ही खेल मानती है जिसके नियम शायद निजी नैतिकता से अलग है।
सही पकड़ा। यहाँ किसी काम को इस आधार पर नहीं आका जाता कि वो नैतिक है या अनैतिक, बल्कि इस आधार पर कि उसका नतीजा क्या निकला। क्या राज्य सुरक्षित रहा? क्या शासक की ताकत बढ़ी? संक्षेप में कहें तो ये सिखाती है कि जरूरत पड़ने पर अच्छा कैसे ना बना जाए।
किताब में वैसे तो 26 छोटे अध्याय हैं, पर हम इसके मुख्य विचारों को कुछ हिस्सों में बांटकर समझते हैं। तो पहला बड़ा सवाल है, सत्ता हासिल कैसे की जाए और उसे शुरू में संभाला कैसे जाए, खासकर नई रियासतों में।
हाँ, इस पर मैकियावेली बहुत व्यावहारिक सलाह देते हैं। जैसे अगर कोई नया इलाका जीता है तो या तो खुद वहीं जाकर बस जाओ ताकि कोई विद्रोह हो तो तुरंत पता चले और उसे कुचला जा सके,
या फिर
वहां अपने वफादार लोगों की कॉलोनियां बसाओ। और एक और बात, पुराने शासक के खानदान को पूरी तरह खत्म कर दो ताकि भविष्य में कोई चुनौती न दे सके।
हो, ये तो काफी कठोर सलाह है।
लेकिन मैकियावेली के हिसाब से जरूरी है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कोशिश करो कि पुराने कानून और टैक्स वगैरह को ज्यादा ना छेड़ो ताकि लोग जल्दी तुम्हें स्वीकार कर लें। उनका मानना था कि वंशानुगत राज संभालना फिर भी आसान है, पर नई सत्ता जमाना बहुत मुश्किल काम है।
यहीं पर वो दो बड़े दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, वर्चू और फॉर्चूना।
हाँ, विरतु और फॉर्चूना। वर्चू का मतलब सिर्फ सदाचार या गुण नहीं है। मैकियावेली के लिए वर्चू वो सब कुछ है जो शासक को सफल बनाता है, हिम्मत, काबिलियत, दूरदर्शिता, रणनीति बनाने की क्षमता, और हाँ, जरूरत पड़ने पर कठोर और निर्णायक होने की ताकत भी।
अच्छा, मतलब एक तरह की क्षमता या स्किल।
बिल्कुल। और फॉर्चूना है भाग्य, किस्मत, या कह लें हालात का उलटफेर जो हमारे काबू से बाहर होता है। मैकियावेली मानते थे कि किस्मत का रोल तो होता है, शायद आधे कामों में किस्मत ही चलती है,
पर बाकी आधा,
बाकी आधा हिस्सा शासक की वर्चू पर निर्भर करता है। वो कहते हैं कि किस्मत एक तूफानी नदी की तरह है, जब नदी शांत हो तभी बांध बनाने पड़ते हैं ताकि बाढ़ आने पर तबाही से बचा जा सके। मतलब तैयारी पहले से करनी पड़ती है। वर्चू से जो ताकत मिलती है वो ज्यादा भरोसेमंद होती है।
इसका कोई उदाहरण भी देते हैं वो?
हाँ बिल्कुल, सीजर बोर्गिया का। वो पोप अलेक्जेंडर VI के बेटे थे, तो उन्हें फॉर्चूना यानी किस्मत का सहारा तो मिला ही, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए जबरदस्त वर्चू दिखाई।
जैसे?
जैसे दुश्मनों को बेरहमी से खत्म किया, चालाकी से गठबंधन बनाए, बहुत तेजी से फैसले लिए। मैकियावेली उनके तरीकों की तारीफ करते हैं, हालांकि वो मानते हैं कि उनकी आखिरी नाकामी बुरी किस्मत, फॉर्चूना की वजह से हुई।
ठीक है, तो सत्ता मिल गई, शुरुआती पकड़ बन गई। अब दूसरा बड़ा सवाल है, उसे बनाए कैसे रखा जाए, इस पर क्या कहते हैं मैकियावेली?
यहाँ मैकियावेली सेना पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। उनका मानना था कि अच्छी सेना और अच्छे कानून, यही किसी भी राज्य की असली बुनियाद है।
और सेना कैसी होनी चाहिए?
वो भाड़े के सैनिकों जिन्हें मर्सनरीज कहते हैं, उनके सख्त खिलाफ थे। कहते थे कि ये भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं होते, ये सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं और बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं।
तो फिर उपाय क्या है?
वो कहते थे कि शासक को अपनी नागरिकों की सेना बनानी चाहिए, एक नेशनल आर्मी जिसमें सैनिक अपने घर अपने देश के लिए लड़ें, और शासक को खुद युद्ध कला में माहिर होना चाहिए, शांति के समय में भी सैन्य अभ्यास करते रहना चाहिए, शिकार पर जाना चाहिए, इलाके को समझना चाहिए।
और यहीं पर शायद वो हिस्सा आता है जिसने मैकियावेली को सबसे ज्यादा विवादास्पद बनाया, शासक का व्यवहार कैसा हो, उसे प्रजा का प्यार पाना चाहिए या उनसे डर पैदा करना चाहिए।
हाँ, ये अध्याय 17 में है। मैकियावेली का तर्क था कि वैसे तो सबसे अच्छा है कि लोग आपसे प्यार भी करें और डरें भी, लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो डर पैदा करना ज्यादा सुरक्षित है।
क्यों, ऐसा क्यों?
उनका मानना था कि प्यार एहसान पर टिका होता है, और इंसान स्वभाव से मतलबी होता है, तो वो अपने मतलब के लिए प्यार भूल सकता है, लेकिन सजा का डर हमेशा बना रहता है, वो ज्यादा भरोसेमंद प्रेरक है।
लेकिन डर से तो लोग नफरत भी कर सकते हैं।
बिल्कुल, और यही मैकियावेली चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, डर पैदा करो लेकिन नफरत से बचो, और नफरत से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों की संपत्ति और उनकी औरतों से दूर रहो, उन्हें बेवजह मत सताओ।
अच्छा, और बादों के बारे में क्या, क्या शासक को हमेशा अपना वादा निभाना चाहिए?
मैकियावेली यहाँ भी बहुत यथार्थवादी हैं। वो कहते हैं कि शासक को वादा तभी तक निभाना चाहिए जब तक वो उसके हित में हो।
मतलब?
मतलब ये कि अगर हालात बदल जाएं या वादा निभाने से नुकसान हो रहा हो तो उसे तोड़ने में हिचकना नहीं चाहिए। उनका तर्क था कि चूंकि ज्यादातर लोग खुद अपना वादा नहीं निभाते, तो शासक ही क्यों वादे से बंधा रहे।
पर इससे तो शासक की छवि खराब होगी।
इसलिए वो कहते हैं कि दिखना हमेशा नेक चाहिए, शासक को एक महान दिखावा करने वाला होना चाहिए, ऊपर से दयालु दिखो, वफादार दिखो, ईमानदार दिखो, धार्मिक दिखो, भले ही अंदर से वैसे ना हो, छवि यानी इमेज बहुत जरूरी है।
यही वो लोमड़ी और शेर वाली मशहूर मिसाल आती है ना?
बिल्कुल। अध्याय 18 में शासक को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए ताकि वो दुश्मनों के जाल को पहचान सके, और शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए ताकि वो भेड़ियों यानी खुले दुश्मनों को डरा सके। सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शेर जालों में फंस जाता है, और सिर्फ चालाकी भी काफी नहीं, क्योंकि लोमड़ी भेड़ियों से खुद को नहीं बचा सकती, दोनों का संतुलन जरूरी है।
और किताब के अंत में वो इटली के हालात पर वापस आते हैं।
हाँ, अंतिम कुछ अध्याय इटली को समर्पित हैं। उस समय इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और फ्रांस स्पेन जैसी बाहरी ताकतों का शिकार बन रहा था। मैकियावेली इतालवी शासकों की कड़ी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि उनमें वर्चू की कमी है, खासकर सैन्य तैयारी के मामले में वो बहुत पीछे हैं।
और वो एक तरह की अपील करते हैं।
हाँ, एक भावुक अपील। वो लोरेंजो डे मेडिसी से कहते हैं कि वो आगे बढ़ें, अपनी वर्चू दिखाएं, किस्मत, फॉर्चूना उनका साथ देगी और इटली को एकजुट करके इन विदेशियों से मुक्त कराएं।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मैकियावेली के मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? पहला तो साफ है, राजनीतिक यथार्थवाद यानी पॉलिटिकल रियलिज्म।
हाँ, दुनिया जैसी है उसे वैसा ही देखो, वैसा नहीं जैसा हम चाहते हैं कि वो हो। आदर्श अपनी जगह ठीक है, पर सत्ता के खेल में, असल दुनिया में, सिर्फ आदर्शों से काम नहीं चलता। ये आज भी उतना ही सच है।
बिल्कुल। दूसरा, शायद सबसे विवादास्पद, राजनीति और नैतिकता का अलगाव।
ये कहना कि मकसद हासिल करने के लिए कोई भी साधन जायज है, एंड्स जस्टिफाई द मींस, ये शायद मैकियावेली ने सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा यही था कि राज्य की सुरक्षा और स्थिरता सबसे ऊपर है और इसके लिए शासक को ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जो निजी तौर पर गलत लगें।
और ये बहस तो आज भी चलती है, राष्ट्रीय सुरक्षा या मुश्किल बिजनेस फैसलों के मामलों में।
सही बात।
तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है वर्च्यू और फॉर्च्यूना का संतुलन।
हाँ, किस्मत का रोल है, पर सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ सकते। अपनी काबिलियत, अपनी तैयारी, सही समय पर सही कदम उठाने से हम हालात को काफी हद तक अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। ये तो जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है ना?
बिल्कुल, चाहे करियर प्लानिंग हो या कोई संकट आ जाए।
चौथा पॉइंट जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है वो है दिखावे और छवि का महत्व।
हाँ, कि लोग क्या देखते हैं ये ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि आप असल में क्या हैं। मैकियावेली ने 500 साल पहले ये समझ लिया था, आज के सोशल मीडिया युग में तो ये बात और भी ज्यादा सच लगती है।
एकदम। और पांचवा, इंसानी फितरत का एक तरह से कड़वा लेकिन यथार्थवादी मूल्यांकन।
कि इंसान मूल रूप से स्वार्थी है, एहसान फरामोश है और डर से ज्यादा काबू में आता है प्यार के मुकाबले, इसलिए शासक को अपनी नीतियां इसी समझ पर बनानी चाहिए। ये लीडरशिप स्टाइल के बारे में सोचने का एक अलग नजरिया देता है।
इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जो आज भी गूंजते हैं। जैसे वो कहते हैं, शासक के लिए जरूरी है कि वो जरूरत के हिसाब से गलत करना सीखे और उसे कब इस्तेमाल करना है या नहीं करना है ये समझे।
हाँ, ये सीधे सीधे राजनीतिक व्यवहारिकता की बात है, कोई लाग लपेट नहीं।
बिल्कुल। और वो डर और प्यार वाली बात, अगर दोनों में से एक को चुनना ही पड़े तो प्यार किए जाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है डर पैदा करना।
सुनने में कठोर लगता है, पर शायद इसमें इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ छिपी है। बस वो चेतावनी याद रखनी है कि डर नफरत में ना बदले।
सही। और वो लोमड़ी और शेर वाला रूपक भी कितना शक्तिशाली है। शासक को जानवर का स्वभाव अपनाना होगा, उसे लोमड़ी और शेर दोनों को चुनना होगा। लोमड़ी जालों को पहचानने के लिए, शेर भेड़ियों को डराने के लिए। ये ताकत और अक्ल के संतुलन की जरूरत को कितने अच्छे से बताता है।
और ये भी कि हर कोई देखता है कि तुम क्या दिखते हो, कुछ ही महसूस कर पाते हैं कि तुम असल में क्या हो। ये पब्लिक परसेप्शन यानी लोगों की नज़र में आपकी छवि बनाने का जो महत्व है उसे रेखांकित करता है, तब भी था आज भी है।
तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मैकियावेली के ये विचार आज भी हमारे काम आ सकते हैं? इन्हें कैसे देखना चाहिए? क्या हमें भी मैकियावेली की तरह सोचना चाहिए?
मुझे लगता है इन्हें सीधे सीधे अपनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक तरह की टूल किट की तरह देखना चाहिए। इनसे हम दुनिया को, खासकर सत्ता के खेल को, पावर डायनामिक्स को बेहतर समझ सकते हैं।
हाँ, जैसे बिजनेस में अपने प्रतिस्पर्धियों की चालों को समझना, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लोमड़ी बनना और जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत या मार्केट पोजीशन को दिखाना, शेयर बनना।
या कभी कभी कंपनी के भले के लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग या किसी को निकालना। शायद मैकियावेली इसे जरूरी कठोरता कहते।
निजी जिंदगी में भी ऑफिस पॉलिटिक्स को नेविगेट करने में, या अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ी रणनीति बनाने में, या अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाने और उसे बचाने में, ये सोच कहीं ना कहीं मदद कर सकती है।
हाँ, और ये हमें सिखाता है कि अनिश्चितता के लिए तैयार कैसे रहें। अपनी वर्च्यू यानी स्किल्स, नेटवर्क, तैयारी बढ़ाकर हम फॉर्चुना यानी बुरी किस्मत या बुरे हालात के असर को कम कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो मैकियावेली के यथार्थवादी विचार आज भी बहुत प्रभावशाली हैं। देशों का अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखना, गठबंधनों का नफा नुकसान देखकर बनाना या तोड़ना, दुश्मन की क्षमताओं और इरादों का अंदाजा लगाना, ये सब मैकियावेलियन सोच की ही परछाई लगता है।
पर यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा हमने पहले भी कहा कि मैकियावेली कोई नैतिक उपदेश नहीं दे रहे थे। वो बस ये बता रहे थे कि उनके हिसाब से सत्ता असल में काम कैसे करती है। वो एक विश्लेषक थे, उपदेशक नहीं। मेरे लिए तो द प्रिंस सबसे बड़ा सबक ये है कि लीडरशिप या कोई भी प्रभावी काम सिर्फ अच्छे इरादों से नहीं होता। दुनिया की जो कठोर सच्चाइयां हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, काबिलियत विकसित करनी पड़ती है, हालात के मुताबिक ढलना पड़ता है, और हाँ कभी कभी कड़े और शायद अप्रिय फैसले लेने का साहस भी दिखाना पड़ता है।
हाँ, और मेरे लिए ये किताब लीडरशिप की जो अंतर्निहित जटिलताएं हैं, जो तनाव हैं, उन्हें बहुत अच्छे से उजागर करती है। जैसे आदर्श और यथार्थ के बीच का तनाव, स्थिरता और बदलाव के बीच, लोगों में लोकप्रिय होने और असल में प्रभावी होने के बीच का तनाव, ये हमें सत्ता और अधिकार के बारे में ज्यादा गहराई से, ज्यादा बारीकी से सोचने पर मजबूर करती है।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम, क्या सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के नियम इन 500 सालों में वाकई बदले हैं, या इंसानी फितरत और सत्ता का खेल वैसा ही है? और क्या एक असरदार लीडर हमेशा एक नैतिक लीडर भी हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।